हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दो, बस मुझे माफ़ कर दो। इस वक्त रोनित पूरी तरह से खून के आंसू रो रहा था, ताकि सिद्धार्थ के दिल में रहम जाग जाए। लेकिन सिद्धार्थ के दिल में भला रहम कैसे आ सकता था? अचानक उसने रोनित का गिरेबान पकड़कर उसे उठाया और उसकी ओर घूरते हुए बोला था, तुम अच्छी तरह जानते हो कि सिद्धार्थ खुराना की ज़िंदगी में गलती करने वालों की कोई जगह नहीं है। लेकिन तूने कितने सालों से मेरा बहुत काम किया है, मेरी मदद की है और मेरा हर हुक्म माना है, तो मैं तुझे जीने का एक मौका तो दे ही सकता हूँ। वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है जितना कि ये दुनिया समझती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तू हीरा के सामने 40 सेकंड तक टिक गया तो तू जिंदा रहेगा। ये सुनकर रोनित जैसे सूखे पत्ते की तरह ढह गया। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो रोते रोते बोला, नहीं, मुझे ऐसी सज़ा मत दीजिए, प्लीज़ रहम कीजिए बॉस, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए प्लीज़ प्लीज़। लेकिन सिद्धार्थ खुराना उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने गहरी नज़रों से उसकी ओर देखा और तुरंत वहां से बाहर निकल गया। वहीं जैसे ही वो निकला, अनामिका भी साथ साथ थी। सिद्धार्थ लाल लाल आंखों से रोनित को ही देख रहा था। तुरंत ही सिद्धार्थ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को देखकर उसने पूछा, क्या आज झलक ठीक है? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर खुराना, आपकी बीवी होश में आ गई हैं, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, सिद्धार्थ की नज़र एक बार फिर रणविजय पर गड़ी। वो मानो कह रहा हो, तुझे हिसाब किताब तो बाद में भी कर सकता हूँ, अभी फ़िलहाल झलक को देख कर आता हूँ। सिद्धार्थ की आंखों के सामने कल रात झलक ने जिस तरीके से उसकी मदद की थी, अपने कपड़े फाड़कर उसकी बाजू पर बांध दिया था, ये सब याद आते ही उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग हुई। लेकिन वो तुरंत ही बड़े घमंड के साथ झलक के पास पहुंच चुका था। झलक तब तक थोड़ी शांत हो चुकी थी। अनामिका उसे अपने हाथों से कुछ फ्रूट्स वगैरह खिला रही थी। सिद्धार्थ वहां गया और झलक को धीरे धीरे संभालने लगा। झलक ने भी सिद्धार्थ को देख लिया और समझ चुकी थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। झलक भले ही अब ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सिद्धार्थ की कई बातें घूम रही थीं। किस तरह सिद्धार्थ ने उसे मनहूस बोला था, ये सब सोचते ही झलक का दिल बार बार टूट रहा था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छुपाना सीख लिया था। फिलहाल उसने सिद्धार्थ को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिद्धार्थ ने झलक को देखकर कहा, अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधा घर चले जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और एक बात, जितनी भी फाइल्स का तुम्हारा काम कल पेंडिंग रह गया है वो तुम घर पर भी कर सकती हो, मैं सारी फाइल्स घर भिजवा दूंगा। ये बोलकर सिद्धार्थ बिना रुके वहां से चला गया। वहीं अनामिका झलक को देखकर बोली, आखिरकार ये इंसान क्या समझते हैं अपने आप को, इसमें इतना घमंड क्यों है? तुम्हारी इतनी हालत देखने के बाद भी इस इंसान को तुम पर तरस नहीं आया, अभी भी अपने ऑफिस का काम तुमसे करवाना चाहता है? झलक ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे इंसानों से ऐसी बातें सुनने की उम्मीद नहीं। अगर कोई मुझसे प्यार से बात करेगा तो मुझे लगेगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर ये मुझे इस तरह से बात करके गया है तो मतलब सब ठीक है। उसके बाद अनामिका सोचने लगी, लगता है लड़कियों को अपनी जिंदगी के साथ ज्यादा ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सिद्धार्थ के जाने के बाद रणविजय तुरंत झलक के पास आया। उसने झलक से पूछा, तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? और स्टडी रूम में अटक जाने के बाद क्या तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी? हाँ, ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम इतनी बड़ी लापरवाह कैसे हो सकती हो झलक? झलक ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, देखो ये मेरा और मेरे पति का मामला था, मैं किसी और के साथ नहीं थी, मैं अपने पति के साथ थी, तो आपको इस बात से क्या लेना देना? झलक का ये जवाब सुनकर रणविजय का गुस्सा और बढ़ गया। उसने झलक को घूरते हुए पूछा, जिस तरीके से मैंने तुम्हें सिद्धार्थ के साथ उस हालत में देखा था, तो बताओ क्या सिद्धार्थ ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की? सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका जवाब दो। एक पल के लिए तो रणविजय की बातें सुनकर झलक पूरी तरह से हैरानी से भर गई थी, लेकिन झलक मुस्कुराते हुए बोली, वो मेरा पति है, और अगर मैं उसके साथ स्टडी रूम में सो भी जाती तो भी, मैंने कह दिया ना कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और तुम जानते हो जितनी नफरत मैं सिद्धार्थ खुराना से करती हूँ उससे कहीं ज्यादा तुमसे करती हूँ, तो जस्ट गो। अब झलक, जो कि हमेशा से बेबाक थी और जो मन में आया वो बोल दिया करती थी, उसने इस बार भी बिना सोचे समझे अपने शब्दों से जैसे गहरी चोट कर दी थी। रणविजय का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसकी नसें तक तन गई थीं। वहीं अनामिका को झलक की बातें सुनकर हल्की सी हंसी भी आ रही थी, लेकिन रणविजय का चेहरा देखकर अब वहां रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने जल्दी से रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रणविजय सर, मेरे ख्याल से आपको अभी जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। कल रात वैसे भी आप ठीक से आराम नहीं कर पाए थे। झलक से हम इस बात पर बाद में बात कर लेंगे। वैसे भी झलक थोड़ी देर में घर आ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि आधे घंटे बाद डिस्चार्ज कर देंगे। प्लीज हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये बोलकर अनामिका ने उन्हें वहां से बाहर जाने का इशारा कर दिया था। इसके बाद वो झलक को बेख्याली से देखते हुए बोली, अरे वाह झलक, समझ में नहीं आता तुम्हें, तुम इतनी बिंदास होकर कैसे बोल देती हो यार। क्या तुम्हें बिल्कुल भी किसी से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि वो रणविजय खुराना है? इतना पावरफुल आदमी है और तुम उसकी खड़े खड़े इस तरह से बेइज्जती कर रही हो। कैन यू बिलीव? क्या तुमने कभी अपने आप पर गौर किया है? झलक, तुम जानती हो उसके अंडर में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और तुम उसके साथ इस तरीके से बात कर रही थी। तब झलक ने अनामिका को देखते हुए कहा, देखो मेरा तरीका यही है, और जो लोग मुझ पर ज्यादा हक जताने की कोशिश करते हैं या मेरे बारे में फैसले करने लगते हैं, वो मुझे जहर लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता लोगों को क्या करना है। भाई मैं मरूं जीऊं या कुछ भी करूं, लोगों को क्या लेना देना। आज मैंने उसे साफ साफ बोल दिया कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो मेरी जिंदगी में दखल देने में लगा हुआ है। अरे मुझे नहीं चाहिए यार ये अमीर लोग, मुझे अमीर लोगों से नफरत हो गई है। तुम सोच भी नहीं सकोगी, इस शहर ने मुझे कितना कुछ सिखा दिया है। इतना कुछ सिखा दिया है कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या नहीं। झलक की इतनी साफ और खरी बातें सुनकर अनामिका को उस पर गर्व भी महसूस होने लगा था। वो मन ही मन बोली, लड़की कितनी सच्ची है, जो इसके दिल में है वही इसकी जुबान पर है। न जाने दोहरे चेहरे वाली इस दुनिया के साथ ये कैसे समझौता कर पाएगी। ये सोचकर अनामिका ने मुस्कुराते हुए झलक से कहा, और बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हें सबसे पहले थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अभी आधा घंटा है तुम्हारे डिस्चार्ज में, तब तक मैं तुम्हारी डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी कर लेती हूँ, फिर हम घर चलते हैं। वैसे बता दूं, दादी माँ तुम्हें लेकर कितनी बार फोन कर चुकी हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं तुम्हें साथ लेकर आ रही हूँ। ये सुनकर झलक ने सिर्फ अपनी गर्दन हिला दी। तभी अनामिका वहां से बाहर निकलकर चली गई थी और मन ही मन सोचने लगी थी, काश मुझ में भी झलक जैसी थोड़ी सी बेबाकी होती तो शायद आज मैं अपनी जिंदगी के साथ इतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रही होती। ये सोचते हुए अनामिका का चेहरा अनचाहे दुखों से भर आया।
वहीं दूसरी ओर आकांक्षा ओबेरॉय कहीं और नहीं बल्कि खुराना हाउस में मौजूद थी। हालांकि वो वहां इसलिए आई थी कि सिद्धार्थ खुराना से मिले और बहाने से उससे बातें करें, लेकिन सिद्धार्थ और झलक तो घर ही नहीं आए थे, जिसकी वजह से वो अभी तक उनसे नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज मौका देखकर वो यहां आ पहुंची थी। आगे की स्टोरी जानने के लिए तैयार रहिए दोस्तों, और पढ़ते रहिए स्टोरी मनिया।